नमस्कार भारत, 2 मई मंगलवार, मैं हूं निखिल रंजन। भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सैनिकों की मौत के आरोपों से पाकिस्तान ने किया इनकार। मारे गए सैनिक के भाई ने सरकार से बदला लेने को कहा।
किन्ना चिर असीं अपनियां औरतां विधवा करवाउंदे रहांगे, क्यों ना एक दिन इस चीज का फैसला कर लिया जाए कि जिहड़ी लड़ाई है मुड़के ना लगे।
उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने 6 और विधानसभाओं के ईवीएम सील करने को कहा। गाय चुराने के आरोप में 2 युवकों की मौत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। फलस्तीनी संगठन हमास ने पेश किया नया नीति दस्तावेज, रुख में नरमी के संकेत। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रॉकेट और मोर्टार से गोलीबारी की है। इस हमले में 2 जवानों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड का कहना है कि मृत जवानों के शवों को क्षत विक्षत किया गया है। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनकी तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हुआ है और जवानों के शव को क्षत विक्षत करने की बात भी गलत है। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने अपने अस्तित्व में आने के बाद जारी किए चार्टर के बाद पहली बार नए नीति दस्तावेज जारी किए हैं। इस दस्तावेज में पहली बार 1967 से पहले की सीमा रेखा के आधार पर इसराइल को मान्यता दिए बगैर अंतरिम फलस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई गई है। इस नए नीति दस्तावेज की भाषा को हमास की तरफ से अपनी छवि नरम बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीते कई हफ्तों से उत्तर कोरिया के विरोध में बयान दे रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सही परिस्थितियों में किम जोंग उन से मुलाकात करने में उन्हें खुशी होगी। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां इस मुलाकात के लिए सही नहीं हैं।
There's a lot of things that go along with that, and I think that's the key thing. Under the right circumstances was, I believe, the phrase he used.
बहुत सारी बातें हैं जो उसके साथ उन्होंने कहीं। मुझे लगता है उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो थे सही परिस्थितियों में। मुझे लगता है ये हमारी नीतियों के अनुरूप ही है और रक्षा मंत्री रेक्स टिलरसन ने जिन नीतियों की बात की उसके अनुसार भी है। हमें देखना होगा कि वे अपने उकसाने वाले व्यवहार पर कुछ नियंत्रण पाए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने कहा है कि नई राष्ट्रीय संविधान सभा के बनाए जाने की जरूरत है जो संविधान को दोबारा लिख सके। उन्होंने कहा कि इस नए संगठन में आम नागरिक होंगे। उन्होंने कहा कि देश को संकट में डाल रहे विरोधियों को रोकने में और मौजूदा राजनीतिक संकट से उबरने में इससे मदद मिलेगी। विपक्षी नेता हेनरिक कैपिराइलस ने कहा कि नया संगठन असंवैधानिक होगा। राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने कहा, आज मई की पहली तारीख को देश का नेता होने के नाते मुझमें निहित राष्ट्रपति के अधिकार, संविधान की धारा 347 के तहत मुझे मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं वास्तविक संवैधानिक अधिकार की मांग करता हूं, ताकि देश का कामगार वर्ग और दूसरे लोग लोकप्रिय संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए नई राष्ट्रीय संविधान सभा बनाएं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो के शब्द। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए यूरोप की यात्रा से जुड़ी नई चेतावनी जारी की है और कहा है कि वहां लगातार हो रहे चरमपंथी हमलों के बारे में अमरीकियों को जानकारी होनी चाहिए। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस में हाल में हुए चरमपंथी हमलों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कथित इस्लामिक स्टेट और अलकायदा हमले की योजना बनाने और चरमपंथी हमले करने में सक्षम हैं। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं और हमलों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अमरीकी कांग्रेस ने सरकार का कामकाज ठप होने से रोकने के लिए बजट पारित कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर दीवार के लिए धन का प्रावधान नहीं किया है। हालांकि रिपब्लिकन नेता सीमा सुरक्षा के लिए $150 करोड़ का प्रावधान कराने में कामयाब हुए हैं। 30 सितंबर तक सरकार का कामकाज चलता रहे, इसके लिए रविवार रात को $1 खरब के खर्चे पर आम सहमति बनी थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर मंगलवार की पहली सभा लेकर हाजिर हूं मैं निखिल रंजन। भारतीय सेना ने कल जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है, और सेना की ओर से जारी प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में 2 जवानों की मौत हुई है। भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जिन 2 जवानों की मौत हुई है उनमें से एक हैं नायब सूबेदार परमजीत सिंह। वो अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर तरन तारण के रहने वाले थे। उनका शव आज पहुंचेगा। परमजीत के भाई रंजीत सिंह ने हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन से बातचीत में कहा है,
सानू आज कोई 12 बजे पता लगा जी उतों कि परमजीत जिहड़ा अपने देश बदले शहीद हो चुका, तो सानू माण भी है कि देश बदले शहीद होया।
रंजीत सिंह कह रहे हैं कि आज हमें 12 बजे के करीब पता चला कि परमजीत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। हमें मान है कि वो देश के लिए कुर्बान हुए, और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका एक बार बदला जरूर लिया जाए। कब तक हमारे देश की माएँ अपने बेटों के लिए रोती बिलखती रहेंगी? कब तक औरतों का सुहाग उजड़ता रहेगा? कब तक एक आम मुल्क से हमारे सिपाही मार खाते रहेंगे? हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इसका फैसला एक ही दिन में किया जाए, आर या पार, ताकि ये लड़ाई दोबारा ना हो, कोई शहीद ना हो। परमजीत सिंह के भाई रंजीत सिंह के शब्द। आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख आज कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में 2 जवानों की मौत की बात कही गई है, और उनके शवों को भी शत विशत किया गया, ऐसे बात भारत की सरकार कह रही है, भारत की सेना कह रही है। उधर पाकिस्तान ने इन आरोपों को गलत बताया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने रक्षा मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह से पूछा कि भारत के दावों के बाद स्थिति कितनी गंभीर नजर आती है।
देखिए, ये बहुत ही सीरियस मसला है। 2 कारणों से ये सीरियस मसला है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी भारतीय सेना ने या भारतीय सरकार ने इस तरह से साफ साफ बोला है कि पाकिस्तानी सेना के रेगुलर लोगों ने आकर एक बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला किया हो। मुझे तो ये भी याद नहीं पड़ता है कि BAT, जो कि भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा बॉर्डर एक्शन टीम, वो आज से पहले भारतीय सेना ने या भारतीय सरकार ने कभी ऑफिशियली उस टर्म को यूज किया हो। जनरली क्या होता है, इस तरह की बात होती है कि पाकिस्तान ने कुछ इरेगुलर्स, कुछ टेररिस्ट भेजे जिन लोगों ने आके इस तरह की हरकत की। ये पहली बार है कि भारतीय सेना, भारतीय सरकार साफ तौर पर कह रही है कि पाकिस्तानी सेना की एक बॉर्डर एक्शन टीम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारतीय कश्मीर के अंदर आई और वहां पर हमारे 2 लोगों को मारा, एक JCO को और एक BSF के हेड कांस्टेबल को, और उनकी लाशों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है।
पाकिस्तान ने पूरी तरीके से डिनाई किया है और उसका कहना है कि हम इस तरह नहीं कर सकते। तो ये जो बातें आ रही हैं, एक तरफ से भारत का आरोप, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का खंडन।
देखिए, ऐसा है कि साहब, ये तो सब लोगों को पता है। मैंने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जहां पर इंसिडेंट हुआ है उस जगह पर खुद भी नौकरी की है जब मैं भारतीय सेना में था, और ये तो सब लोगों को पता है कि पिछले 25-1 साल में इस तरह के की हरकतें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई हैं, दोनों साइड से हुई हैं, और लोगों ने कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया है। बॉर्डर एक्शन टीम दोनों जगह से जाती है, तो ये कहना कि साहब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेना इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है या भारतीय सेना दूध की धुली हुई है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है, ये तो कहना उचित नहीं होगा।
तो कहां अब चीजों को आप आगे जाते हुए देख रहे हैं?
सबसे चिंता की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज की डेट में कोई भी वार्तालाप नहीं चल रहा है। जैसा कि हमने कमोडोर जाधव के मुद्दे पे देखा, जिसको कि पाकिस्तान बोलता है कि वो रॉ एजेंट था और भारतीय बोलते हैं कि वो रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थे, उस मुद्दे पे भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा गैप है और बहुत ज्यादा समस्या है। जनरली क्या होता है, 2 देशों के दरमियान जब बातचीत हो रही होती है तो इस तरह की चीजें जनरली सुलट जाती हैं। अभी क्योंकि दोनों देश बातचीत नहीं कर रहे हैं और एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, इसलिए खतरा है कि ये बात हो सकता है कि जैसे कि भारत ने पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस बार भी इस तरह की कोई कार्रवाई करे और उस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो जिस तरह का ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह से ये घटनाएं एक के बाद एक हो रही है, ये अच्छी दिशा की ओर नहीं दर्शा रही है।
तो क्या कोई रास्ता आप देखते हैं?
देखिए साहब, रास्ता तो राजनीतिक स्तर पर निकलेगा और अभी ये तो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के ऊपर और राजनीति के जो उनके बड़े अहदेदार हैं उनके ऊपर है कि वो इस बात को किस तरह से आगे लेके जाते हैं। पर जिस तरह की हरकतें दोनों साइड से हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी दोनों साइड से हो रही है और जिस तरह की कार्रवाइयां दोनों तरफ से हो रही हैं, अभी तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में दोनों देश कुछ नया कर सकते।
इस तरह की घटनाओं से सरकार पर भी आप कोई दबाव बढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल तो पूछ ही रहा है सरकार से?
देखिए ये समस्या तो तभी हो गई थी जब पहली बार इस सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की और उसकी ओनरशिप ली। एक टेम्पलेट सेट हो गया है कि भाई आप कम से कम एक सर्जिकल स्ट्राइक तो करेंगे जहां पर कि आप पाकिस्तानी सेना के ऊपर और उनके ठिकानों के ऊपर या उनके जो लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के उनके कुछ तरह किसी तरह से आप एक डेमोंस्ट्रेबल एक्ट, एक एक्ट जो कि जनता को दिख रहा है वो पॉलिटिकल एक्ट आप करेंगे। तो उसकी वजह से प्रेशर तो सरकार के ऊपर है और एक टेम्पलेट सरकार ने क्रिएट किया हुआ है, उससे कम अगर करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे देखिए पिछली बार इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस बार इन्होंने कोई देखिए उससे बड़ा कम किया है, सिर्फ 4 गोली चलाकर आ गए।
वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ।
नमस्कार भारत शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के 6 और विधानसभा सीटों की ईवीएम को सील करने का आदेश दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने विकास नगर विधानसभा सीट से ईवीएम को सील करने का आदेश दिया था। याचिका करने वालों ने कोर्ट में आशंका जताई है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। देहरादून से राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट सुनिए।
नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य की 6 और विधानसभा सीटों की सभी ईवीएम को सील करने का आदेश दिया है। इससे पहले इसी गुरुवार को हाई कोर्ट ने विकासनगर विधानसभा सीट की ईवीएम को सील करने का आदेश दिया था। इन सभी मामलों में वकील रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी को बताया कि ये सभी केस एक एक कर फाइल किए गए थे। इनमें विकासनगर सबसे पहले था और संभवतः कांग्रेस नेता नव प्रभात को याचिका दायर करते देख अन्य लोग भी आगे आए।
हमने पहला पिटीशन फाइल किया था नवप्रभात जी का, तो उनका पार्टी ने भी बहुत अच्छा उनकी अच्छी अच्छी वो है पकड़ है पार्टी है ना, शायद प्रभात जी को देखते हुए हमारे पास आए हों।
हाईकोर्ट ने विकासनगर के बाद राजपुर रोड, रानीपुर, रायपुर, मसूरी, प्रतापनगर और हरिद्वार ग्रामीण की ईवीएम में भी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की सभी ईवीएम को सील करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि ईवीएम पहले ही सुरक्षित हैं। कोर्ट ने फिर अतिरिक्त सील लगाने का आदेश दिया।
ऑर्डर तो कोर्ट ने इनको इश्यू नोटिस किया है, रेस्पोंडेंट्स में है और उनको 6 हफ्ते में रिप्लाई मांगा है और मीनवाइल कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया है कि जो पंचम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसकी एडिशनल सील लगाई जाएगी और जो कंसर्न एसडीएम होगा वो इसका कंप्लेंट कराएगा।
हरिद्वार ग्रामीण सीट को छोड़कर सभी याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत चुनाव हारे थे और यहां से एक मतदाता ने ईवीएम को चुनौती दी है। रविंद्र बिष्ट कहते हैं कि उनके पास कुछ और भी लोगों की शिकायतें आई थी लेकिन चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने की 45 दिन की समय सीमा बीत जाने के कारण अब उन्हें दायर करना मुश्किल लग रहा है। राजेश डोबरियाल, बीबीसी देहरादून।
बिहार भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आज से किशनगंज में शुरू हो रही है। किशनगंज बिहार के सीमांचल का मुस्लिम बहुल जिला है। साल 2014 की लोकसभा और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसे में किशनगंज में बीजेपी की बैठक के क्या मायने हैं, सुनिए मनीष शांडिल्य की इस रिपोर्ट में।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए बिहार भाजपा के बड़े नेताओं का जुटान रविवार से ही किशनगंज में शुरू हो गया था। सोमवार को कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। आज और कल अलग अलग प्रस्ताव पेश होंगे और अगले 1 साल की गतिविधियां तय होंगी। यह प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय की अध्यक्षता में कार्य समिति की 2री बैठक होगी। भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर इससे इनकार करते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में बैठक किसी खास मकसद से की जा रही है। क्या पार्टी मुस्लिमों के लिए खास प्रस्ताव लाएगी, क्या कार्य समिति में घुसपैठ, गो तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, इन सवालों पर संजय कहते हैं,
सबका साथ सबका विकास हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं हमारी कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप लगता रहा है वो बेबुनियाद आरोप लगता रहा है। हम तो मानते हैं, हाँ जरूर हमारा है कि सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं रहा। घुसपैठ का मामला तो कार्य समिति में और क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, सदस्य किन मुद्दों को अध्यक्ष की अनुमति से उठाते हैं, जो विषय आएंगे उस पर चर्चा होगी। देखिए मुसलमानों के बीच हमेशा हम संदेश देने का प्रयास करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती।
सीमांचल सांप्रदायिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है और भाजपा का फोकस एरिया भी। यह इलाका चिकन नेक भी कहलाता है। भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे भाजपा के सहयोगी संगठन बांग्लादेशी घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टिकरण, गौ तस्करी जैसे मुद्दों को इस इलाके में बड़े जोर शोर से उठाते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन का मानना है कि देश के मौजूदा माहौल में किशनगंज में भाजपा की बैठक का मकसद बिल्कुल साफ है।
इसका मकसद बहुत स्पष्ट है कि वो क्या चाहते हैं। भले ही बैठक में वो कोई भी प्रस्ताव लें, लेकिन बैठक आयोजन करके जो वो मैसेज देना चाहते हैं, जो जाहिर तौर पर वो ध्रुवीकरण है, वो मैसेज दे देंगे।
2014 से पहले भाजपा इस इलाके में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। भाजपा की कोशिश होगी कि वह कार्यसमिति की बैठक के जरिए इस इलाके में फिर से खुद को जीतने की स्थिति में लाने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए। माना जा रहा है कि अगर भाजपा यहां और मजबूत होगी तो इसका असर पड़ोस के कोसी और अंगिका इलाके पर भी पड़ेगा। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
इधर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने सरकार की एक महीने की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के नेताओं के अलावा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे ब्यौरे के साथ समीर आत्मज मिश्र।
राज्य में सरकार बनने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले दिन यानी सोमवार को सबको इंतजार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के भाषण का था। योगी शाम 4 बजे पहुंचे और करीब 1 घंटे तक उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिन के भीतर उनकी सरकार परिणाम देगी।
हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे। कानून का राज स्थापित हो, इस दिश से प्रदेश के अंदर चाहे वह वन माफिया हो, चाहे वह भू माफिया हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का माफिया हो, उसके खिलाफ सख्ती से सरकार निपटेगी। हम लोग कानून के इस राज को स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर सरकार उससे सख्ती के साथ निपटने के लिए संकल्पित है।
आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा का वादा किया था और इसके लिए तत्काल प्रयास शुरू कर दिए गए।
शपथ लेते ही हम लोगों ने केवल 2 मुद्दों पे चर्चा की। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित रहें। हम लोगों ने इसी समय, हमने कहा 24 घंटे के अंदर हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड गठित हो जाए और वह कार्य करना प्रारंभ कर दे। और सचिनों, आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए।
उन्होंने किसानों की ऋण माफी, कानून व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता अभियान को लेकर अपनी सरकार की पीठ ठोकी और उनका सबसे ज्यादा जोर अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की घोषणा पर रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्रदेश के प्रशासन से कहा कि अवैध बूचड़खानों को बंद करो, उनके लिए एक नियमावली तय की गई, बंद नहीं हो पाए। अगर कहीं कोई पुलिस का अधिकारी जाता था तो उसके साथ छुरेबाजी होती थी, उसको मार करके भगा दिया जाता था। हमने कहा सत्ता बदल चुकी, अब कोई छोरा नहीं मारेगा, सबके छोरे चाकू सब गायब हो चुके होंगे। आप लोग जाइए, एक झटके में सबको बंद करने के लिए कह दीजिए और नहीं होता तो आप लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई कार्य समिति की बैठक आज भी जारी रहेगी और आज इसका आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी निगम चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। मौजूदा समय में राज्य के ज्यादातर नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा सत्ता और संगठन के बीच तालमेल और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो रही है। बैठक के आखिरी दिन यानी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
असम में गाय चोरी के आरोपों में 2 युवकों की बेरहमी से की गई हत्या के बाद इलाके में तनाव है। हालांकि पुलिस ने इस बीच भीड़ में से 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के साथ गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा।
असम के नौगांव जिले के कासोमारी इलाके में रविवार को कथित तौर पर गाय चोरी करने के आरोप में जिन 2 युवकों की हत्या कर दी गई, उस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में शामिल बाकी के करीब 10 से 12 लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये पूरी तरह एक गाय चोरी से जुड़ा मामला है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों लड़के निर्दोष थे और किसी काम से कासोमारी गांव की तरफ गए थे। मृतक रियाजुद्दीन अली के पिता रहम अली ने BBC से कहा, मेरे 4 बेटों में रियाजुद्दीन सबसे बड़ा था, अभी उसकी उम्र महज 19 साल थी। वह माल ढोने वाला टेम्पो चलाता था। दूसरा लड़का अबू हनीफा रिश्ते में मेरा भतीजा था और वह सब्जी बेचता था। रविवार को सुबह करीब 8 बजे दोनों ही घर से नाश्ता करके गए थे, लेकिन कासोमारी के पास खेत में कुछ लोगों ने उन पर गाय चोरी करने का संदेह कर पकड़ लिया और लाठियों और धारदार हथियारों से पिटाई कर दोनों की हत्या कर दी। मुसलमान होने के कारण ही हम पर ये अत्याचार हुआ है। ये थे मृतक रियाजुद्दीन अली के पिता रहम अली के शब्द। असम में गाय चोरी करने की घटना पहले भी सामने आती रही है, लेकिन ये पहला मामला है जहां गाय चोरी के आरोप में भीड़ ने मार डाला। नौगांव के पुलिस अधीक्षक देवराज उपाध्याय कहते हैं,
गाय रोकक का कोई मुद्दा नहीं है। आपका देखिए, आपका गाय कोई चोर करके ले जा रहा है तो उसमें पकड़ चेसिंग तो होगा ही, गलती इतना ही हुआ है कि उनको मार दिया, लेकिन जब मार दिए हैं तो ये मर्डर केस बना है।
असम की सत्ता में एक साल पूरा करने जा रही बीजेपी इस बात से इनकार करती है कि गोरक्षा पर बात करने से इस तरह की हिंसा में इजाफा हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं,
गौ रक्षक तो गौ की रक्षा ही करे, और जो व्यक्ति गौ की रक्षा करेगा किसी व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकता। अगर कोई व्यक्ति गौ रक्षा के नाम पे या इतने आवेश में आकर के कहीं हत्या होती है और ऐसे लोगों को उचित सजा जो मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से सरकार देगी।
पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई को जरूर आगे बढ़ा रही है, लेकिन उग्र ग्रामीणों की भीड़ ने जिस बेरहमी के साथ दोनों मुस्लिम युवकों की पिटाई की, इससे इलाके में काफी तनाव उत्पन्न हो गया है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ, और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। 1988 में फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के जन्म के समय एक चार्टर बना था, और उसके बाद अब पहली बार इस गुट ने अपना नया नीति दस्तावेज पेश किया है। नई नीतियों में हमास ने यहूदियों से नफरत न होने की बात कही है, और ये भी कि वो एक व्यवहारिक क्रांति है जिसका मकसद हमलावरों से लड़ना है। इस दस्तावेज को हमास की छवि बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सुनिए मानसी दास से पूरा ब्यौरा।
फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने कहा है कि उनकी लड़ाई यहूदियों से नहीं है, बल्कि कब्जा करने वाले यहूदी आक्रमणकारियों से है। हमास ने अपने अस्तित्व में आते वक्त जारी हुए चार्टर के बाद पहली बार नए नीति दस्तावेज जारी किए हैं। हमास ने साल 1967 से पहले की सीमा रेखा के आधार पर इसराइल को मान्यता दिए बगैर अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई है। हमास प्रमुख खालिद मशाल ने दोहा में इस दस्तावेज को जारी करते हुए कहा,
Hamas also believes that our struggle against the Zionist...
हम हमास की विचारधारा, नीतियों और दिशा निर्देशों के बारे में एक स्पष्ट दस्तावेज बनाना चाहते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की कोशिश का नतीजा नहीं है और ना ही इसका फैसला अधिकांश लोगों ने लिया है, लेकिन सभी इस बात पर राजी हैं कि इसका वक्त आ गया है। हमास प्रमुख खालिद मशाल के शब्द। हमास गजा पर शासन करता है, जहां बीते एक दशक से इसराइल और मिस्र की घेराबंदी है। बताया जाता है कि ये घेराबंदी चरमपंथियों को हमला करने से रोकने के लिए की गई है, लेकिन इस कारण यहां की अर्थव्यवस्था बुरे हाल में है। इसराइल ने 1967 के मध्य पूर्व की जंग के बाद पश्चिमी तट, गजा और पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने 2005 में अपने सैनिकों और बस्तियों को गजा से हटा तो लिया, लेकिन अब भी यहां के हवाई क्षेत्र, इसके उत्तरी और पूर्वी परिधि और इसके इर्द गिर्द मौजूद पानी पर उसी का नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र के लिए इसराइल के दूत डैनी डेनन ने हमास के नए नीति दस्तावेज को मानने से इनकार किया है।
It's committed to the destruction of the state of Israel.
ये एक चरमपंथी समूह है और इसराइल को तबाह करना चाहता है। वो इसराइल के साथ साथ एक राज्य बनाने की बात नहीं करते, वो ऐसा राज्य बनाने की बात करते हैं जो पूरी तरह इसराइल की जगह ले लेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस नए दस्तावेज को और हमास की नई राजधानी को मानने से इनकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए इसराइल के दूत डैनी डेनन के शब्द। विश्लेषक मानते हैं कि ये दस्तावेज हमास की तरफ से अपनी छवि नरम बनाने और बाहरी दुनिया से अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन क्या हमास की इस पहल से बीते करीब चार दशक से चली आ रही ये समस्या हल हो सकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
हमास ने पेश किया नया नीति दस्तावेज। और अब आइए अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं। मानसी दास आ चुकी हैं स्टूडियो में अखबार लेकर। जी मानसी, क्या है आज
मैं देख रही हूँ ज्यादातर जो हर अखबार का पहला पन्ना है वो कश्मीर से आ रही खबरों से भरा हुआ है। मेरे हाथ में है जनसत्ता, जिसका पहले पन्ने का आधा हिस्सा पूरा कश्मीर से रिलेटेड खबरों से भरा हुआ है। अखबार लिखता है कि भारतीय सैनिकों का सर काटने और शवों को क्षतविक्षत करने के अपने कलंकित इतिहास को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने एक और बर्बर कार्रवाई में नियंत्रण रेखा पर घात लगाकर दो जवानों की हत्या कर दी और उनके सर काट दिए। अखबार के मुताबिक बीते 6 महीनों में ये इस तरह की तीसरी घटना है। जनसत्ता में छपी एक और खबर के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी PAC से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार देर शाम अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर पर बैठक हुई थी और जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने इस्तीफा दिया है। एक खबर आपको दैनिक जागरण से बता दूँ, खबर के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली और हरियाणा के बीच ऐसी बस चलाई जाएगी जो पानी पर चलेगी। ये बस पानी और सड़क दोनों पर चल सकेगी। खबर के अनुसार दिल्ली के धौलाकुआं से हरियाणा के मानेसर के बीच ये बस चलाई जाएगी और इसकी शुरुआत 6 महीनों में हो जाएगी। अखबार का कहना है कि पानी की कमी से जूझ रहे हरियाणा और दिल्ली में बसों के चलाने के लिए पानी का इंतजाम कैसे किया जाएगा, इस पर गडकरी का कहना है कि राज्य और केंद्र इस पर विचार करेंगे। अब एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है कि भारत सरकार आज़ादी के बाद से अब तक के अपने सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी कर रही है। अखबार के अनुसार कश्मीर या पूर्वोत्तर भारत से कहीं अधिक खतरनाक इस नए मिशन के तहत सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों को आम जनता से बात करने और डेटा इकट्ठा करने के लिए छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में भेजा जाएगा। जमीन का सर्वे करने और नक्शा बनाने की कोशिश में राजस्व विभाग के अधिकारी अब इन जंगलों में जाएंगे।
बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की समीक्षा के लिए। और आइए अब खेल की खबरें सुन लेते हैं इंदु पांडे से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। कल IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में दो मुकाबले हुए। पहला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और दूसरा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लॉयंस के बीच में। बात करते हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा की कप्तानी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने कल इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराते हुए प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम होने का गौरव हासिल किया। और ICC ने अपनी ताज़ा वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें भारत वनडे टीम रैंकिंग में 5 अंक लेकर 3rd स्थान पर पहुंच गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने टॉप पर अपनी जगह बरकरार रखी है। ऑस्ट्रेलिया 2nd नंबर पर बना हुआ है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल कर ली है और अब उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वैसे भारत ने इस बार अपनी टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी भेजे हैं। क्या कहते हैं हरबिंदर सिंह, जो कि हॉकी के एक्सपर्ट हैं?
काफी लोग अपने नए नए खिलाड़ी जो हैं उनको देखते हैं, भेजते हैं एक्सपेरिमेंटल तौर पर, ताकि जो वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल है या वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम तैयार हो सके। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और मलेशिया के साथ जो मैचेज हैं, जब उसके बाद जो सेमीफाइनल फाइनल होंगे, तो उसमें हमारी टीम आगे अच्छा ही करती जाएगी।
आज ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। और कल स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-4, 6-1 से हराकर बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब 10वीं बार जीत लिया। खेल समाचारों में बस इतना ही, नमस्कार।
खेल समाचारों के साथ ही अब कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, तो आइए विदा लेने से पहले सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रॉकेट और मोर्टार से गोलीबारी की है और इस हमले में 2 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने अपने अस्तित्व में आने के समय जारी किए गए चार्टर के बाद पहली बार नए नीति दस्तावेज जारी किए हैं। बीते कई हफ्तों से उत्तर कोरिया के विरोध में बयान दे रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने कहा है कि नई राष्ट्रीय संविधान सभा बनाए जाने की जरूरत है, जो संविधान को दोबारा लिख सके। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए यूरोप की यात्रा से जुड़ी नई चेतावनी जारी की है और कहा है कि वहां लगातार हो रहे चरमपंथी हमलों के बारे में अमरीकियों को जानकारी होनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और आज स्टूडियो संभाला है दीपक जसरोटिया ने। आपसे शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।